प्रातः काल की बेला में आज हमारे बीच सादा जीवन, उच्च विचारों को सार्थक करने वाली, गंभीर, जैसा बोल वैसे कर्म को दर्शन कराने वाली, ईमानदार हमारी आदरणीय मीरा दीदी जी, जो के मलेशिया से हमारे बीच पधारी हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। कहना चाहूंगी चार पंक्ति दीदी के लिए। दीदी का व्यक्तित्व है ऐसा, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में होता है वक्त की कलम, जिनके हाथों में होता है वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व की धनी आदरणीय दीदी, वरिष्ठ राजयोगी जो शिक्षिकाओं में से आप एक हैं, आप भारत के ही रतन हैं। 1968 से ईश्वरीय ज्ञान में जुड़े, मैसूर साउथ इंडिया से आपने ज्ञान प्राप्त किया। आदरणीय दादी हृदय पुष्पा जी की रूहानी दृष्टि के प्रकंपन आपके जीवन में नया मोड़ दे गए। दीदी ने जैसे ही दादी को देखा तो पहला संकल्प आया कि इनके जैसा बनना है, दूसरा संकल्प आया कि इनके जैसा बनना है तो इनके साथ रहना है। कमाल तो वह थी कि दादी जी और दीदी जी एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, क्योंकि दीदी को हिंदी नहीं आती थी, कन्नड़ और अंग्रेजी आती थी, और दादी हिंदी और सिंधी आती थी। लेकिन फिर भी बाबा ने ऐसा चुनकर आपको सेवा में लगा दिया। आपने साकार ब्रह्मा बाबा जानकी दादी जी, अन्य दादियों के सानिध्य में आप पले हैं। दादी जी के साथ, हृदय पुष्पा दादी जी के साथ आपने पालना प्राप्त की और करीब 9 ईयर आपने उनके साथ बेंगलुरु में ही सेवाएं प्रदान की। 1977 से आप विदेश सेवाओं में चली गईं। बेहद सेवा में बाबा ने आपको भेज दिया, ट्रिनिडाड, कनाड, गयाना, मॉरिशियस में आप सेवाएं करते करते 42 ईयर से मलेशिया में आप अपनी सेवाएं एक निर्देशिका के रूप में प्रदान कर रही हैं। तो आज ऐसे अनुभव भरी सागर, जो दादी और बाबा के अनुभव, उनके सानिध्य में जो पली हैं, तो आज हमारे बीच रखेंगी, सम्मान से सम्मान की प्राप्ति कैसे होती है। आदरणीय मीरा दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को, बाप दादा के घर में, अपना ही घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम छोटा सा एक प्रयोग करेंगे, एक्सरसाइज के रूप से। आप सभी इसमें साथ देना। हम सभी एक सेकंड में इस स्थूल देह की स्मृति से विस्मृत हो जाए और अपना सूक्ष्म शरीर फरिश्ते ड्रेस को पहन के एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में उड़ जाए। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने अपने को देखे, बाबा सभी को, सभी फरिश्तों को दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहा है। आप उस बाप दादा की दृष्टि में खो जाए। बाबा का अव्यक्ति प्यार और शक्ति की अनुभूति करें। बाबा से सूक्ष्म वतन में परिस्ते स्वरूप द्वारा दृष्टि से शक्ति प्यार का अनुभव करते हुए मैं आत्मा फिर से धीरे धीरे इस साकार वतन में आ जाती हूँ। अपने आप को इस साकार शरीर में यहां बैठे हुए अपने को देख रही हूं। आप सोचते होंगे इस प्रयोग से हमने क्या सीखा, क्या अनुभव किया कि बाबा की दृष्टि में और आपस हम सब की दृष्टि में कितना अंतर है। आप सभी ने अनुभव किया कि जब बाप दादा हम आत्माओं को देखते हैं, दृष्टि द्वारा मिलन मनाते हैं, तो हम आत्मों में क्या देखता है, थोड़ा सोचिए। जब बाबा हमको दृष्टि देते हैं तो मुझ आत्मा में क्या देखता है, और हम आपस में एक दो को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं। तीसरा, अपने आप को जब हम देखते हैं तो क्या देखते। तीनों में अंतर है, जरूर अंतर है। मेरे अनुभव के आधार से मैं बताना चाहती हूं, जब बाबा हम आत्माओं को दृष्टि से मिलन मनाते हैं तो मुझ आत्मा का तीनों कालों को देखता है। हम क्या थे और क्या है और क्या बनने वाली हैं। तो बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा के लिए अति श्रेष्ठ होता है। इसका प्रूफ है कि बाबा की दृष्टि से हमारी स्थिति बदल जाती है। हम अपने आप को ही समझना चालू कर देते हैं, अपने आप को ही स्वमान में देखना चालू कर देते हैं। बाबा की दृष्टि की भाषा हमें अपने स्वमान की याद दिलाती है, हम क्या थे, क्या है और क्या बनने वाले। और जब हम आपस में एक दो को दृष्टि देते हैं तो क्या देखते हैं? सिर्फ दो काल देखते हैं, वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या बनने वाले। जब हम अपने आप को देखते हैं तो सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, भविष्य भूल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि स्वमान में स्थित रहना किसको कहा जाता है। स्वमान में स्थित रहना माना बाबा मुझे किस दृष्टि से देखता है, मैं भी अपने आप को उसी दृष्टि से देखूं। बाबा सदैव हम हरेक आत्मा का गुण देखता है, भले हमारे में 99 अवगुण हैं, एक गुण है तो उसकी तरफ बाबा की नजर आते हैं, नजर जाता है दृष्टि द्वारा, उस विशेषता को पहचान करके हमको इतना सम्मान देते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं, तो हम अपनी कमजोरी सब को भूल जाते हैं। अपने आप को परिवर्तन करने की प्रतिज्ञा बाबा के सामने ही कर लेते। तो बाबा की दृष्टि सदैव आत्मा के तरफ ही होता है, बाबा किसी का शरीर को नहीं देखता, यही प्रूफ है। तो हम भी अपने आप को सदा स्वमान में रहने के लिए जिस दृष्टि से बाबा ने हमको देखा, अपना बनाया, जो बोल मुझ आत्मा के प्रति बाबा ने महावाक्य के रूप में, वरदान के रूप में उच्चारण किया, मुझे सदैव वो ही सुनाई दे और वो ही विशेषता मुझे अपने में दिखाई दे। तो कभी भी हम अपने स्वमान की सीट से नहीं उतरेंगे। कोई कुछ भी मेरे लिए कहे, कोई मेरे कोई अवगुण का वर्णन भी करे, उसका असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। मैं समझती हूं हम ब्राह्मण अपने आप से कम समय देते हैं, अपने आप को कम समय देते हैं। हमारा समय आज जैसे बाबा ने कहा ना, व्यर्थ वेस्ट बातों में बहुत समय चला जाता है, परचिंतन में, परदर्शन में अपने लिए बहुत कम टाइम देते। तो अगर हम आज से लेकर ये अभ्यास करें स्वचिंतन करने का, तो ऑटोमेटिकली जितना ज्यादा समय हम अपने आप के लिए देते हैं, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप की वैल्यू को जानेंगे, तो उस तरह से अपने आप को चलाएंगे। स्वमान में रहना कोई अभिमान नहीं है, कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। स्वमान और अभिमान में क्या अंतर है? टोटली ऑपोजिट है। जहां स्वमान है वहां अभिमान नहीं आ सकता। परंतु जब हम स्व शब्द को मान से अलग कर देते हैं, वो अभिमान के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर हम मान शान के भूखे रह जाते हैं क्योंकि स्व को भूल गए। अगर स्व के साथ मान का शब्द यूज करते, स्वमान, अपनी आत्मा का शान कभी हम नहीं छोड़ेंगे। जो शान को नहीं छोड़ते वो कभी परेशान होंगे नहीं। तो सबसे पहली परिभाषा, स्वमान में रहना माना, अपने आप को बाबा जैसे मुझे देखता है उस दृष्टि से मैं अपने आप को देखूं, उसी प्रकार अपने आप को मैं चलाऊं। और दूसरा, स्वमान में रहने का मतलब, मैं जो हूं जैसा हूं वैसे ही मैं अपने को जानूं, न कम न ज्यादा। कम जानते हैं तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीनता भाव आ जाता है। कभी ज्यादा समझते तो फिर अभिमान भी आ सकता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। परंतु मैं आत्मा जैसे हूं वैसे ही मैं अपने को जानू, माना हमारे अंदर कुछ कमियां भी है, कुछ विशेषता भी है। अभी हम कोई सर्वगुण संपन्न नहीं बने हैं, कुछ ना कुछ कमियां है। तो स्वमान में रहने का मतलब कि अपनी कमी को भी जाने और अपनी विशेषता को भी जाने। अपनी विशेषता को परमात्मा का देन समझ करके उसको सेवा में लगाए तो अभिमान कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो परमात्म प्रसाद है। तो वो प्रसाद के रूप से हम सबको बांट देंगे। स्वमान में रहने का सिर्फ ये मतलब नहीं सा हम अपनी विशेषता को जाने, साथ साथ में अपनी कमी को भी जानना है। तभी हमारे अंदर नम्रता निर्माणता आएंगे। जिसको स्वमान है वो सदैव निर्माण है, इसलिए दूसरों को वो मान देते हैं। अगर कोई उसको अपमान भी करे उसको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि अपने स्वमान में रहते हैं, अपने आप को जानते हैं, इसलिए उनको वो इफेक्ट नहीं करता है। ये दूसरी परिभाषा, मैं जैसे हूं वैसे मैं अपने को जानूं, कमी को भी विशेषता को भी। कमी को परिवर्तन करना है, विशेषता को परमात्मा की देन समझ के यूज करना है। और तीसरी परिभाषा स्वमान का, बाबा रोज मुरली में हमको पाठ पढ़ाते हैं। ये विश्व एक नाटक रंग है, नाटक मंच है। इसमें हरेक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, अविनाशी पार्ट। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो इसलिए हमको अपनी पार्ट को एक्सेप्ट करना है और खुशी खुशी से उस पार्ट को बजाना है। अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका पार्ट बदली नहीं हो सकता। आपको जो पार्ट मिला है वो ही आपको बजाना है। इसलिए एक्सेप्ट करें और उसको खुशी खुशी से बजाएं। कभी भी कंपेयर ना करें, भेंट ना करें। अरे इसके जैसा पार्ट मेरा होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे पसंद नहीं है मेरा पार्ट। अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरा कोई पार्ट आपका नहीं बजा सकता, आप दूसरे का नहीं बजा सकते हो। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, तो उसके लिए स्वमान क्या? आप अपने पार्ट को खुशी खुशी से एक्सेप्ट करो और उसको बजाओ। उसके लिए एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट सीखना है? मेरे जैसा मेरा पार्ट दूसरा कोई बजा नहीं सकता। रिप्लेसमेंट है नहीं, मुझे ही मेरा पार्ट बजाना है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर हूँ, विशेष एक्टर हूँ, ये याद रहे। जैसे छोटा सा रिस्ट वॉच होता है ना, उसमें छोटी छोटी स्क्रू होती है। अगर एक स्क्रू भी गुम हो जाए तो रिस्ट वॉच कोई काम का नहीं। तो एक एक छोटी छोटी स्क्रू का भी इम्पोर्टेंस है। तो भले हमारा पार्ट कैसे भी हो, विलन का हो या हीरो का हो, हमको खुशी खुशी से एक्सेप्ट करके बजाना है। तो इसके लिए हमको ये सोचना है कि मैं बहुत विशेष हूं, मेरे बिना ये ड्रामा चल नहीं सकता। ये अभिमान नहीं, आपकी जो विशेषता है ना आपकी पार्ट में, आपके बिना कोई दूसरा वो विशेष बजा नहीं सकता। तो आप इम्पोर्टेंट हो गए ना, वीआईपी हो गए ना। तो ये स्वमान में रहो कि मेरा बहुत विशेष पार्ट है, ऐसा एक्सेप्ट करके खुशी खुशी से बजाएंगे तो आज ऑर्डिनरी एक्टर कल हीरो एक्टर बन सकता है। ये तीसरी परिभाषा है। कभी कंपेयर नहीं करना है, इनके जैसा मेरा पार्ट होता, अरे भाई हर एक को जो मिला है उसको वो ही बजाना है। और चौथी परिभाषा है, स्वमान में रहने का मतलब क्या? बाबा ने हम सबको अनेक टाइटल्स दिया है, कम से कम 108 टाइटल्स। आप इस बारी मधुबन में ये होमवर्क कर कीजिए, लिस्ट बनाइए, हमारा 108 टाइटल्स कौन सा बाबा ने दिया है। एक एक टाइटल हमारी स्वमान की सीट है, वो हमारा सीट है। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने कहा कि तुम आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा उसी सीट पर बैठ करके इस शरीर को, इस मन बुद्धि संस्कार को चलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो ऐसे हर एक टाइटल को भी याद रखें और टाइटल के साथ साथ उसका स्वरूप हो करके कर्म करें, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके जीवन में जीत ही जीत होगा, कभी हार नहीं। तो रोज अमृत वेले उठते ही एक टाइटल सेलेक्ट करें और वो टाइटल को सीट बनाएं और उसी सीट पर सारा दिन स्थित होकर के कर्म करें और कर्म कराएं। तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होंगी क्योंकि आप अपने शान में हो। अभी दूसरी बात, जो ऐसे स्वमान की सीट पर सदैव स्थित रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी, उनकी चिन्ह क्या होगा? सबसे पहले वो संतुष्ट आत्मा होंगे, संतुष्ट मणि होंगे। उसके अंदर कोई भी चाहना नहीं होता है, एकदम भरपूर स्वमान धारी बनना माना भरपूर आत्मा, संतुष्ट आत्मा। और दूसरी निशानी क्या होगी? वो सबको मान देंगे, सम्मान देंगे, सत्कार देंगे, किसी का अपमान तिरस्कार नहीं करेंगे। क्यों आज हम किसी का तिरस्कार करते हैं, अपमान? क्योंकि अपना स्वमान नहीं है, मुझे मान चाहिए, तो वो नहीं मिलता है तो हम अपमान कर लेते हैं। स्वमानदारी आत्मा सबको सम्मान देंगे, उनका मान देने की रिकॉर्ड बहुत अच्छी, रिकॉर्ड देने की रिकॉर्ड बहुत अच्छी होंगे। और तीसरा चिन्ह क्या होगा? स्वमानधारी माना ही वास्तव में सीखने की भावना रखने वाले। जब हम सीखने की भावना रखते हैं तो हमारे से गलतियां तो होंगी ना, तो गलतियों का करेक्शन भी तो मिलेगा ना। जब हम स्वमान में रहेंगे तो जब हमको करेक्शंस मिलता है बड़ों से, छोटों से, समान वालों से, हम उसको पॉजिटिव रूप से एक्सेप्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ये अंडरलाइन कर लीजिए, स्वमानधारी रेस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट करना माना इमोशनल, रेस्पॉन्ड करने का मतलब कि सोच समझ करके जवाब देना, जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी रो लेना, ये रिएक्ट करना हो गया ना। स्वमानधारी कभी रिएक्ट नहीं करते, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो कभी भी उनके मन में मिस्टेक्स को करेक्ट करने का अगर कोई करते हैं, उसको पॉजिटिव रूप से स्वीकार करेंगे। मुझे याद है मम्मा कहा करती थी कि अगर आपको कोई करेक्शन करे, आपने गलती भी नहीं किया है तो भी आपके ऊपर आरोप लगाए तुमने गलती किया है, तो कैसे आप उसको जवाब देंगे? एक्सेप्ट कर लो। कभी भी करेक्शन को रिजेक्ट नहीं करो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको काम में आएगा। क्योंकि हम सभी यात्रा पर है ना, सीख रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल हो सकता है वो गलती हमारे से हो, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करना, रेस्पॉन्ड करना स्वमानदारी की निशानी है। और चौथी बात, स्वमानदारी सबको सम्मान देंगे, अपमान करने वालों को भी सम्मान देंगे, निंदा करने वालों का महिमा करेंगे, गाली देने वालों को गले लगाएंगे, क्योंकि वो अपने स्वमान में हैं, वो अपने आप को जानते हैं, तो इसलिए वो नेगेटिव को पॉजिटिव में रेस्पॉन्ड करेंगे। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है निरहंकारी। तो बाबा ने कई बार मुरली में बताया है, माया का आने का दो ही दरवाजा है, अभिमान अथवा अपमान। जिसके अंदर अभिमान होता है उनको जल्दी अपमान फील होता है तो रिएक्ट करते। तो स्वमानधारी सदा अपने स्वमान में रहने के कारण, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट होने के कारण कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करेंगे। अपमान करने वालों को भी मान और सत्कार करेंगे, वरना झुकेंगे। इनो निर्माणता का मतलब क्या होता है? झुकना। जितना हम झुकेंगे तो हम विश्व को झुकाएंगे। निर्माणता का गुण हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। आज ही सुबह को हम प्रकाशमणि दादी का कुछ अनुभव सुन रहे थे, उसमें दादी ने भी ये विशेष बात सुनाई थी। ये कभी नहीं बोले निर्माण, निर्माणता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। जो निर्माण होते हैं वो झुकते हैं, वो झुक करके दूसरों को झुकाते हैं। जैसे देखिए, आपको कोई हार पहनने आवे तो आप उस हार को कैसे स्वीकार करेंगे? आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा ना, और हार डालने वालों को भी थोड़ा झुक करके हार पहनाना पड़ेगा। तो माना हम अपने स्वमान में होने के कारण हम अपनी विशेषता को नहीं भूलेंगे, परंतु विशेषता का अभिमान भी नहीं होगा। हम निर्माणता से हर काम करने के कारण सबके प्रिय ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सबके दुआओं को लेने का विधि क्या है? निर्माणता, स्वीटनेस। जितना हम हर एक आत्मा को अपने से दुआएं देते रहेंगे, सम्मान देते रहेंगे, उतना अपने अंदर स्वमान बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हमको इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी अभिमान का या अहंकार का अंश न आए, इसका हमको बहुत संभाल करना है। और वो आता भी है दो शब्द से, मैं और मेरा। तो इसलिए बाबा ने सिखा दिया है कि जहां मैं शब्द आवे वहां क्या बोलो? आत्मा। मेरा शब्द आए तो बाबा, मेरा बाबा, उसमें सब मेरा मेरा समा जाता है। तो इसलिए हमको संगम युग में जितना जितना हम अपने स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे, तो उतना भविष्य में आपकी जड़ चित्रों के सामने आपके बगैर आपको इतना सम्मान से सत्कार करेंगे। क्योंकि हमारा संगम युग का एक एक कर्म भविष्य की यादगार बन जाता है। तो इसलिए आज भी हम विशेष दुनिया में लोगों की हिस्ट्री सुनते हैं, उसमें भी किस किस का नाम सामने आता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वमान में रहे हो और सबको सम्मान दिया हो और निर्माणता से चले हो। तो प्रकाशमणि दादी का हम सब के लिए इसके कनेक्शन में एक वरदान है। दादी की फेवरेट शब्दों में यही कहेंगे कि निमित, निर्माण और निर्मल वाणी। आप सभी भी इसको सौगात के रूप में ले जाइए। जो समानदारी होंगे वो निमित भाव सदैव रखेंगे। निमित माना ट्रस्टी, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा करण करावन हार कर रहा है और करा रहा है, हम निमित है। निमित का दो अर्थ है हिंदी में। निमित मीन्स फॉर नेम सेक, ऐसे ही मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फॉर नेम सेक। और निमित माना इंस्ट्रूमेंट भी, क्योंकि जैसे हारमोनियम होता है ना, हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है पर उसको चलाने वाला निमित है उसको चलाने के लिए। ऐसे हमारे शरीर भी इंस्ट्रूमेंट है पर हमको चलाने वाला करण करावनहार बाबा है। तो इसमें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। तो ब्राह्मण जीवन में सबके दिल जीतना है। एक बारी बाबा ने कहा ना कि आप सभी को 3 सर्टिफिकेट लेना है तभी आप फरिश्ते बन सकते हो ब्राह्मण से। वो 3 सर्टिफिकेट कौन सा? कि मैं भी अपने आप से संतुष्ट हूँ, परिवार भी मेरे से संतुष्ट है और बाबा भी हमारे से संतुष्ट है। वो 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए 3 क्वालिफिकेशंस भी चाहिए। तो बाबा ने बता दिया है कि बाबा को, बाबा से सर्टिफिकेट लेना है, बाबा हमारे से संतुष्ट है, उसके लिए चाहिए सच्चाई, सफाई। आज भी कल भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, जो साफ दिल होते हैं वो बाबा की हर डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, जो साफ दिल होते उससे परमात्मा भी प्रसन्न है। तो बाबा से अगर सर्टिफिकेट लेना है तो बाबा को राजी करना है ना, और बाबा राजी होगा सच्चे दिल से। और दूसरा, हम अपने आप से कैसे सर्टिफिकेट दे, मियां मिट्टू भी नहीं समझना है और सर्टिफिकेट भी अपने आप को देना है, उसके लिए हमको श्रीमत में मनमत परमत कभी मिक्स नहीं करना। और हम ऐसे चल रहे हैं या नहीं उसका एग्जामिनेशन हम कैसे करें? तो जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, चांद ट्रांसलेट हो या कोई बाबा के सामने बैठते हैं, उस समय मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उस समय हमारी दिल बोलते हैं कि हम मनमत पर चल रहे हैं या परमत का प्रभाव है या श्रीमत। अगर हम श्रीमत पर सदा चलते हैं तो हमारे मन खाता नहीं है। अगर विवेक खाता है तो अंडरस्टूड है देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसलिए उसको छिपाना नहीं, फौरन हमको बाबा को या तो बाबा के इंस्ट्रूमेंट सोल्स को बता करके हम उसको क्लियर कर दे। तो माना अपने आप की सर्टिफिकेट हम कैसे दे सकते हैं? जब हम सदैव श्रीमत के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, आज की मुरली को आप पढ़ लो, उसमें 6 बातें बाबा ने बता दिया है। कौन बाबा की हर श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करेंगे? अगर उन बातों को आप अपने जीवन में धारण कर ले तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी रही एक बड़ी सर्टिफिकेट, वो कौन सा? परिवार से। बहुत बड़ा ये बड़ी सर्टिफिकेट है, सारे परिवार हमको सर्टिफिकेट दे वो संतुष्ट हैं हमारे से। चलो 100% संतुष्ट नहीं है, 95% भी संतुष्ट है, वो भी सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? उसके लिए बहुत सिंपल विधि है, रेस्पेक्ट दो रेस्पेक्ट लो, सम्मान दो और सम्मान लो, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। पर पहले देना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन पहले ये नहीं वो देवे, नहीं। अभी कई ब्राह्मण पूछते हैं किसी को रेस्पेक्ट देने का मतलब क्या होता है। एक होता है रिगार्ड, वो तो एक्सटर्नल है, रिगार्ड तो कोई भी दे सकते, पर रेस्पेक्ट अंदर का है, अंदर से रेस्पेक्ट दिया जाता है नो? तो माना हर एक आत्मा की विशेषता को देखे, विशेषता को आइडेंटिफाई करे और उस आत्मा को उस विशेषता को यूज करने के लिए प्रोत्साहित करें। बाकी बातें छोड़ दो, रेस्पेक्ट का मतलब यही होता है। बाबा ने भी तो ऐसे ही हमको रेस्पेक्ट दिया ना, हमारे अंदर की विशेषता को देख करके उसको कैसे यूज करना है बाबा की सेवा में वो हमको दिखाया, तो हम विशेष आत्मा बन गए। तो रेस्पेक्ट देने का ये नहीं कि फालतू महिमा करो ऊपर ऊपर से, उसके सामने महिमा करो उसके पीछे उसके ग्लानी करो। मैं कई बार सोचती हूँ, देखो इंसान में क्या होता है, जब कोई आदमी जिंदा होता है ना, उसकी सारा टाइम उसकी ग्लानी करते, उसकी निंदा करते। जब आत्मा निकल जाती है ना शरीर से, वो मर जाता है, तो मुर्दे के सामने जाके उसके गुणों की महिमा करते हैं। क्या फायदा, क्या फायदा? वो तो सुन नहीं सकता, फूल फल सब कुछ लाके रखते हैं उसके सामने। अगर वो जिंदा होते हुए थोड़ी उस साहब की महिमा कर लेते, इतना खुश हो जाते ना। वो एक गीत है ना, जब हम प्यासे थे तो पानी नहीं पिलाया, जब हम मर जाते हैं तो मुख में गंगा जल डालने के लिए आते हो, क्या फायदा? माना जब जिंदा होते हुए किसी की विशेषता को बताओ ना, उसको उसको खुश करो ना, तो वो आत्मा खुशी से वो विशेषता को यूज करेंगे। तो माना रेस्पेक्ट देने का ये है, बाहर का कुछ करने का नहीं, हमको अंदर में, भले आप मुख से कुछ नहीं बोलो पर अंदर में उसी विशेषता को पहचानो और विशेष दृष्टि से उस आत्मा को देखो। तो जब भी वो आत्मा आपके सामने आएंगे उनको थोड़ा अपलिफ्टमेंट फील होगा, जैसे बाबा के सामने आते तो हमको फील होता है, दादियों के सामने आते तो हमको फील होता है ना, जैसे कि हम जैसे कि ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये वास्तव में ब्राह्मण परिवार चाहते हैं, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना कि किसी में कोई कमी है, है तो कमी, परंतु बार बार हम वही कहेंगे तो वो कमी दूर नहीं होगा और बढ़ जाएगा। जैसे डॉक्टर किसी की बीमारी को देखता है, अगर वो बीमारी वर्णन करे तो वो पेशेंट और भी बीमार हो जाएगा ना। तो इसलिए संतुष्टता का सर्टिफिकेट सबसे लेना है तो क्या करना पड़ेगा? रेस्पेक्ट देना है, रेस्पेक्ट लेना है। देने से मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। तीन चीजें मांगने से नहीं मिलता है, देने से मिलेगा, रेस्पेक्ट, लव एंड कोऑपरेशन। ये देने से मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को कहो ना तुम क्यों नहीं सहयोग देते हो, परे सहयोग देने के लिए प्यार का पानी तो दो ना पहले। प्यार का पानी झाड़ को दिया ही नहीं तो फल कैसे निकलेगा। तो इसलिए हमको मान का भूखा नहीं रहना है। बाबा ने हमको बहुत समान दे दिया है ना। हमको मान के भूखे चाहिए नहीं, भूखे है नहीं, हम इतना भरपूर है। हमको देना है, देना है, देना है। मैं समझती हूँ अगर ब्राह्मण परिवार में हम सभी ये कला सीख जाए, सबको सम्मान देना है, सत्कार करना है, शब्दों से नहीं दिल से, तो सब समस्या का हल हो जाएगा। है ना, आप मानते हो ऐसे? जितने लोग मानते हाथ उठाओ। तो आज से लेकर देना चालू कर दो, सबको, सबकी विशेषता को देखना, सबकी विशेषता मन में रखना, उसके बारे में सोचना, तो प्रॉब्लम है नहीं। मैं कई बार देखती हूँ बड़ों के पास अपॉइंटमेंट लेकर के कोई बात करने जाते हैं तो क्या बात करते हैं, यही कंप्लेंट, मेरे को मान नहीं मिला, मेरे को अटेंशन नहीं मिला, मेरे को कोई एक ग्लास पानी भी नहीं दिया, इन्हों छोटी मोटी बातें। तो अगर हम भरपूर रहेंगे, बाबा ने दे दिया है, तो फिर हम सदैव संतुष्ट रहेंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए स्वमान में रहना बहुत जरूरी है। स्वमान माना ही स्वदर्शन चक्रधारी, स्वमान माना ही माया जीत। लास्ट मुरली में बाबा ने होमवर्क क्या दिया था, मन जीत जगत जीत। तो माना अगर हम स्वमान में रहते हैं तो मन में कोई भूख है नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम जीत बन जाएंगे, हार कभी नहीं होगा। तो ये भी एक एक क्या कहते हैं कि रॉयल्टी है। आज बाबा ने कहा ना, आपका रॉयल चलन होना चाहिए, आपकी रॉयल वार्तालाप। मैं सोच रही थी रॉयल कौन सा, स्वमान की भाषा ही रॉयल्टी है। स्वमान में रह करके जो भाषा बोलेंगे वो रॉयल ही होगा, और वो रॉयल भाषा दूसरों को अपने स्वमान की याद दिलाएंगे। तो इसलिए इस वारी आप सभी यही लक्ष्य लेकर के जाए कि हम अपने स्वमान की सीट को कभी नहीं छोड़ेंगे। कितना भी कोई अपमान करे, कितना भी कोई हमारा तिरस्कार करे, हम उसका दुख नहीं लेंगे, परंतु उनको अपने स्वमान की याद दिला करके उनको सुख देने का, सुखदेव का काम करेंगे। क्योंकि जितना स्वमान की सीट पर संगम युग पर हम बैठते हैं, उतना भविष्य का सिंहासन हमारा गारंटी है। तो इसलिए कभी देह भान, देह अभिमान के कारण हम अपनी सीट को नहीं छोड़े, तो तभी आपके सब शक्तियां आपके सेवक बन करके आपकी सेवा करेंगे। जहां सर्व शक्तियों का साथ होगा वहां तो विजय है ही। तो मैं आशा रखती हूँ कि हम सभी बाबा के ऐसे आशाओं को पूर्ण करते, अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर के सबको सम्मान देते, समस्या समाधान स्वरूप हम बन जाए। ओम शांति। अभी हम दो मिनट शॉर्ट कमेंट्री देते हैं, तो उस कमेंट्री के साथ साथ हम योग करेंगे। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूँ। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मैं ज्योति बिंदु स्वरूप, मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। सर्व गुणों का सागर मैं आत्मा अभी परम ज्योति परमात्मा के सम्मुख हूँ। परम ज्योति परमात्मा से सूर्य की तरह प्रकाश और शक्ति किरणें मेरे ऊपर उतर उतर कर आ रही है। मैं आत्मा इन किरणों के बाहों में समा गई हूँ। परमात्मा से मुझ आत्मा को शांति शक्ति वर्षे के रूप में मिल रहा है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझे इतनी आत्माओं में से ढूंढ करके अपना बनाया है। मैं अपनी स्वमान में सदा रहूं। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, जितना जितना मैं अपनी स्वमान में रहूंगी तो सबको मेरे द्वारा सम्मान देती रहूंगी। हर एक आत्मा से विशेषता को लेकर मैं विशेष आत्मा बन जाती हूँ। ऐसे सारा दिन स्वमान की सीट पर स्थित होकर सबको सम्मान देते हुए संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त कर मैं आत्मा विजयी रतन बन जाती हूँ। मैं परमात्मा की संतान पवित्र आत्मा अपने स्वमान में स्थित हूं। मैं शांत शक्ति स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप Thank you.